समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में हम करते हैं आपका हार्दिक अभिनंदन। ये कार्यक्रम लाता है आपके लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से महत्वपूर्ण जानकारियां। इस कार्यक्रम के निमित्त हम पेश करते हैं देश के विभिन्न हिस्सों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक खबरें, और साथ ही उन हस्तियों को भी करते हैं याद जो वाबस्ता हैं आज के दिन से। अगले 30 मिनट तक हमें एहसास होगा आपकी मौजूदगी का, इसलिए स्वीकार कीजिए मेरा यानी प्राची प्रिया का प्रणाम, साथ ही इजाजत दीजिए मुझे कार्यक्रम परिक्रमा को आगे बढ़ाने की। आज मेरी सहयोगी प्रस्तुतकर्ता हैं तन्वी खुराना।
हेलो प्राची, गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM. आई एम तन्वी खुराना, लाइक माय को एंकर प्राची सेड, एंड यस, दिस program is a selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, business capsules, tributes and a lot more. So over the next 30 years we have all this for you. So let's begin our program without further ado with the headlines, shall we?
Bilkul.
External Affairs Minister S. Jaishankar with his Brazilian counterpart Mauro Vieira co-chairs 9th India-Brazil Joint Commission meeting in New Delhi.
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन आज शाम समाप्त हो जाएंगे। 6 जिलों की 24 सीटों पर 18 सितंबर को होगा मतदान।
सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल टू बीआरएस लीडर के कविता इन लिकर पॉलिसी स्कैम केस।
मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
ओवर 70 पीपल किल्ड इन 4 डिफरेंट इंसिडेंट्स ऑफ असॉल्ट इन पाकिस्तान्स बलूचिस्तान प्रोविंस।
और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा, कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान स्मृति मंधना 15 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगी।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today we'll talk about Dahi Handi.
मच गया शोर सारी नगरी रे आया बिरज का पाका संभाल तेरी गगरी रे ओ आया बिरज
दही हांडी जन्माष्टमी उत्सव के बाद मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। जहां जन्माष्टमी उत्सव कल 26 अगस्त को मनाया गया था, वहीं आज देश के कई कोनों में यानी कि 27 अगस्त को दही हांडी का महोत्सव खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्सव को खासकर महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्यों तन्वी?
एब्सोल्युटली, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स इन इंडिया टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्ण। बिलीव्ड टू बी द 8th इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, कृष्ण इज रिवर्ड अक्रॉस द कंट्री। प्लेसेज लाइक मथुरा, विच इज बिलीव्ड टू बी लॉर्ड कृष्णस बर्थ प्लेस, एंड वृंदावन वुड बी अ बज विद द सेलिब्रेशंस।
बिल्कुल, ये पर्व खासकर महाराष्ट्र, वृंदावन, मथुरा में हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं। दही हांडी की रस्म में एक मिट्टी के बर्तन यानी कि हांडी को ऊंचाई पर लटकाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं। कई बार वस्तुएं भी होती हैं और कई बार खाने पीने की सामग्री, जैसे कि दही हो गया, मिष्ठान हो गया, है ना। तो दही हांडी मशहूर खेल प्रतियोगिता मानी जाती है। इस उत्सव में युवा अधिक संख्या में शामिल होते हैं और पर्व की रौनक बढ़ाते हैं। दही हांडी महोत्सव के दौरान मैं आपको बताऊं कि हांडी तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से प्रतियोगिता रखी जाती है। जो भी पहले हांडी फोड़ेगा उसे इनाम दिया जाता है। इनमें लोग मानव का एक पिरामिड बनाते हैं, यानी कि सबके कंधे पर चढ़ करके कैसे जो हवा में लटकते हुए उस मटकी को हम लोग लोकने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर उसे फोड़ते हैं। कितना ही सुखद लगता है ना देखने में।
राइट, इट्स अ टीम वर्क एंड इट्स सो मच फन। एज द लेजेंड गोज, लॉर्ड कृष्ण लव्ड बटर और एज वी कॉल इट माखन, एंड वुड ऑफन स्टील इट फ्रॉम द पॉट्स केप्ट इन हिज होम, हेंस ही इज फॉन्डली कॉल्ड माखन चोर। लॉर्ड कृष्णस मदर यशोदा वॉज इरिटेटेड बाय हर सन्स tantrums and she decided to hang the butter pot to prevent him from stealing. To collect the butter, Krishna and his friends would build human pyramids and from there they would proceed to divide the butter among themselves and enjoy it. So I think that is the story behind why we do this Dahi Handi procession. So since then this custom has developed into a significant ritual the people observe during Janmashtami.
Bilkul. Dahi Handi mein main ek aur baat share kar deti hun saath hi ki Dahi Handi mein ek saaf naye matke mein doodh, dahi, ghee, kuch kate hue phal jaise sep, kela, anar, hai na, angoor, sukhe meve, is tarike ki cheezein kishmish, badam aadi jo hai wo dali jati hai taki jab मटकी फोड़े और वो रस गिरे तो पहली बार जब स्वाद आए तो लगे कि आह कुछ तो चखा है. इसके बाद पानी मिलाकर इसे अच्छी तरह से फेंटा जाता है. आजकल दही में लोग सूखा मेवा और कुछ धनराशि भी डालते हैं. महाराष्ट्र में जहां तक मैं याद कर पा रही हूं दही हांडी अब सिर्फ एक उत्सव ही नहीं रह गया है, ये खेल बन गया है. इसमें गोविंदाओं की एक टोली एक दूसरे को पछाड़ने में लगी रहती है.
In Gujarat, Dahi Handi is an integral part of Janmashtami festivities. People set up elaborate handis in youth form, human pyramids to break them. The celebration is marked by traditional garba dances, folk music and sweet distributions showcasing the state's rich cultural heritage and devotion to Lord Krishna. If we talk about Uttar Pradesh, Dahi Handi is a celebration of epic proportions, particularly in Mathura and Vrindavan. Devotees reenact Lord Krishna's childhood antics with elaborate processions and human pyramids. The atmosphere is filled with bhajans, kirtans and traditional sweets, immersing participants in divine bliss.
बिल्कुल. और महाराष्ट्र में दही हांडी एक भव्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है. खासतौर पर मुंबई और पुणे में हजारों लोग इस उत्सव को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं जिसमें प्रतिभागी पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं. इस प्रतिस्पर्धा में लोग एक दूसरे के कंधे पर खड़े होकर जैसा हम अभी बात भी कर रहे थे तन्वी है ना ये हांडी को तक पहुंचते हैं और फिर उसे फोड़ते हैं. इस पर्व की ऊर्जा महसूस की जा सकती है जिसमें पारंपरिक संगीत नृत्य और कृष्ण जन्माष्टमी पर बनाए जाने वाले भोग भी शामिल है. दही हांडी का ये सुरम्य उत्सव भगवान श्री कृष्ण के जन्म को जीवंत बनाता है.
If we talk about Delhi particularly, Dahi Handi is a popular event with many districts hosting competitions. Human pyramids are formed and prizes are awarded for the most creative and tallest pyramids. Traditional food, music and dance performances add to the festive atmosphere, attracting thousands of spectators and participants.
और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तन्वी तो उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में दही हांडी का उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है ना.
एंड द अपकमिंग नेक्स्ट सेगमेंट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे. इट इज अ टाइमली रिमाइंडर फॉर द नीड ऑफ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज इन लाइफ. नेशनल स्पोर्ट्स डे 2024 इज ऑन थर्सडे. ओवर द ईयर्स द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो यूज दिस डे एज अ प्लेटफॉर्म टू लॉन्च वेरियस स्पोर्ट्स स्कीम्स इंक्लूडिंग द खेलो इंडिया मूवमेंट विच वॉज अनाउंस्ड इन 2018.
राष्ट्रीय खेल दिवस एक ऐसा अवसर भी है जब राष्ट्र अपने खेल महारथियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित करता है. आइए जाने तन्वी से मेजर ध्यानचंद के बारे में.
इन अ कंट्री दैट हैज रिवर्स स्पोर्टिंग सुपरस्टार्स लाइक सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली एंड बलबीर सिंह सीनियर अमंग अदर्स, हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद हैज रिजर्वड अ स्पेशल प्लेस फॉर हिमसेल्फ. बॉर्न इन अलाहाबाद विच इज नाउ प्रयागराज in Uttar Pradesh on 29th of August 1905 as Dhyan Singh, he rose to prominence in a pre-independence period.
बिल्कुल तन्वी. मैं आपको बताऊं कि द्वितीय विश्व युद्ध से भी पहले के वर्षों में भारतीय हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी ध्यान सिंह ने सन 1928, 32 और 36 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जीत की साथ भारत की ओलंपिक स्वर्ण पदक की पहली हैट्रिक पूरे करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. दिन में अधिकांश समय रेजिमेंटल ड्यूटी में व्यतीत होने के कारण ध्यान सिंह चमचमाते चांद की रात में हॉकी का अभ्यास करते थे जिसके कारण उनका नाम ध्यानचंद पड़ा. चंद का मतलब हिंदी में चंद्रमा भी तो होता है.
बिल्कुल.
हॉकी के इस दिग्गज खिलाड़ी ने सन 1926 से लेकर के 48 तक मैच खेला. इस दौरान उन्होंने भारत के लिए 185 मैच खेले और 400 से अधिक गोल भी किए जिसके बाद वे हर समय के महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक बन गए.
while he retired as a major in the Punjab Regiment of the Indian Army in 1956, the Indian government went on to confer the Padma Bhushan, the third highest civilian award, in the same year. The National Sports Day is celebrated on Dhyan Chand's birthday on 29th of August to honour the hockey legend. National Sports Day 2024 will be celebrated on Thursday. Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia has given a clarion call for nationwide sports participation to celebrate National Sports Day on 29th of August. Mr. Mandavia echoed Prime Minister Narendra Modi's dream of making India a fit nation. The minister highlighted the significance of advancing the Prime Minister's Fit India movement, stressing that it is the responsibility of every Indian to maintain their health and stay active. He also added that National Sports Day is not only an opportunity to honour our sports heroes, but also a reminder of how sports can help us maintain a balanced and healthy life.
बिल्कुल, चलिए आपको सुनाते हैं भारतीय हॉकी टीम के सदस्य राजकुमार पाल से हमारे संवाददाता शैलेंद्र शर्मा की खास बातचीत।
भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दो ओलंपिक खेलों में मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। टीम के प्रदर्शन पर जहां देशवासियों को गर्व है, वहीं खिलाड़ियों का मनोबल भी नई ऊंचाइयों पर है, जिसे हॉकी के लिहाज से भविष्य के लिए बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। आज इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी राजकुमार पाल, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले हैं। राजकुमार भारतीय पुरुष हॉकी टीम में मिडफील्डर हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले तो आपको ओलंपिक्स में पदक जीतने की बधाई। आप देश से क्या कहना चाहते हैं?
जो हम लोग का मेडल कंटिन्यू ओलंपिक में दो बार आया है, और हम लोग का हार्डवर्क रहा है कि हम लोग डबल मेडल लाए, बट जो हम लोग की तैयारी काफी अच्छी चले, देशवासियों को इतना अच्छा प्यार मिला इस ओलंपिक्स में, और हम लोग सोचे कि अपना 100% देंगे पूरा एफर्ट के साथ। टीम भी यही सोच रही थी।
राजकुमार जी, आपका अनुभव कैसा रहा, किस तरह की तैयारियां आपने की?
ओलंपिक ग्राउंड में क्राउड ज्यादा होता है, मुझे भी थोड़ा स्टार्टिंग मैच में डर लग रहा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला मेरे सीनियरों से जो वहाँ पे बताए मुझे कि फोकस मत करना बाहर की चीजों, जो क्राउड रहेगा ये सब, अपने जो प्रैक्टिस के बारे में ज्यादा सोचना है।
राजकुमार जी, आपने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया, आपकी टीम को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब आप इतने मंच पर जाते हैं और वहाँ पे आपको बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव होता है आपके ऊपर?
हर टीम डिफरेंट आइडिया से खेलती है, तो हर टीम कोचिंग स्टाफ है उस पे ज्यादा काम करते हैं, तो हम लोग हर एक जो उधर के मेन की प्लेयर होते हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं कि 20 से राइट लेफ्ट अटैक क्या है, उस प्लेयर का पर्सनल क्या स्किल है। तो मुझे लगता है काफी मेहनत के साथ हमारे जो वीडियो एनालाइज होते हैं, वीडियो निकालते हैं, उसको देखना होता है, स्ट्रक्चर देखना होता है, अपने पोजीशन देखनी होती है दूसरे पोजीशन पे। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसके पीछे काफी बड़ा परिश्रम होता है, तैयारियां पहले से होती है तभी हम लोग का रिजल्ट मिल पाता है।
ओलंपिक्स जैसे मंच पर जहां दुनिया भर के देश इकट्ठा होते हैं और सबका सपना होता है कि वो एक बार तो ओलंपिक्स पदक हासिल करें, भारतीय हॉकी टीम लगातार दो ओलंपिक्स से पदक ला रही है, ये आपके हिसाब से टीम के आत्मविश्वास को कितना बढ़ाता है?
टीम का काफी अच्छा परफॉर्मेंस है और आने वाले दोनों मेडल का कलर चेंज भी हो सकता है। गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट काफी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है, राज्य सरकार भी पहले से ज्यादा जागरूक हुए लोग, तो लोगों में और यूथ में भी काफी देखने को मिल रहा है कि स्पोर्ट्स में काफी लोग आना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट स्पोर्ट्स के लिए काफी कुछ कर रही है। हम लोग जैसे खेल के आए, मिले मोदी जी से, तो हम लोग से पूछे कि आप लोग को और क्या फैसिलिटी दिया जाए, तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने के लिए तैयार है वो लोग, आप लोग मेहनत करो, खेलने फोकस करो, बाकी सरकार देखेगी, जो आने वाले फ्यूचर है और ब्राइट दिख रहा है।
तो ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से खेलों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो टॉप्स स्कीम, विदेशों में कैंप्स, बेहतरीन कोच और इक्विपमेंट जैसी सभी सुविधाएं जो मिल रही हैं, इससे आपको क्या लगता है खेल में कितना बदलाव देखने को मिला है?
इसमें सर काफी बदलाव देखने को मिलेगा, काफी प्लेयर्स आएंगे और एक उनको पहले से पता चल जाएगा अवेयरनेस कि हाँ गवर्नमेंट कर रही है, तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जो पहले जो होती थी। फिटनेस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, पता है आइडियाज क्या है, पॉलिसी क्या है, कहाँ करना है, उनको टारगेट भी मिल जाता है, यूथ के लिए अच्छा रहेगा। उनको बस कहना चाहूंगा कि कठिनाइयां भी बीच बीच में आएंगी, तो उसके लिए उनके 100% तैयार होना चाहिए और मेंटली फिजिकली हार्डवर्क करना, जिस पे ज्यादा फोकस करेंगे वो इतना सक्सेस मिलेगा।
बिल्कुल राजकुमार जी, आप अपने खेल से प्रदेश और देश का मान ऐसे ही बढ़ाते रहें, भारतीय हॉकी टीम की सफलता का दौर भी जारी रहे, यही हर भारतीय की कामना है।
और अब समय हो चला है कि हम जानें अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से कि उनके पास क्या विशेष है।
The National School of Drama's NSD's Repertory Company is celebrating 60 years of its contributions to Indian theatre by organising Rang Shashti. The 17-day Grand Theatre event is being held at the NSD building in New Delhi. Rang Shashti is showcasing plays written by some of the most renowned authors and playwrights of India, along with interactive seminars featuring its alumni. More on this from our correspondent.
The Rang Shashti honours the legacy of NSD's Repertory Company, which was set up in 1964 to be a platform originally for graduates of the school and their academic interests. Since then, it has blossomed into one of NSD's major institutions, working on contemporary and modern plays and introducing experimental works on a regular basis. Over the past six decades, the Repertory has produced a vast array of performances and provided a stage for countless actors, directors and playwrights. The Rang Shashti Festival is showcasing a series of plays by monumental playwrights such as Kalidas, Abhigyan Shakuntalam, Dharamveer Bharti's Andhayug, Ismail Chunar's Lala Majnu, Vijayadan Detha's Mairi Main Kaise Kahun and Ajay Shukla's Taj Mahal Ka Tender. The theatre school hopes that by bringing together theatre enthusiasts, students and professionals, Rang Shashti will inspire the next generation of theatre practitioners. Adarsh for Parikrama, Akashvani, Delhi.
The event commenced on 23rd of August and will continue until 9th of next month. Tickets are available online with prices ranging starting from 200 rupees.
और जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ नंदग्वाल समाज के लोग स्वयं को कृष्ण के वंशज मानते हैं और अपनी गायों से मिलने वाला दूध कभी किसी को भी नहीं बेचते हैं, बल्कि जो कोई आता है तो उन्हें फिर ऐसे ही दे देते हैं बिना पैसे लिए। इस बारे में गांव के पूर्व प्रधान राजा भाव मंदाड़े ने अपनी इस कई वर्ष पुरानी परंपरा के बारे में और अधिक जानकारी दी।
मेरा नाम राजा भाव संभाजी मंदाड़े है और उम्र मेरी 65 साल की है। महाराष्ट्र में हिंगोली जिला कलमनुरी तालुका है। कलमनुरी तालुके में येले गांव गौली है और यहाँ एक आख्यायिका है। ये गांव में 200 से 250 गौली के जो घर है, इनके घरों में दूध बेचे नहीं जाते हैं। मथुरा में गौलनी हमारे जाते थे दूध बेचने के लिए, तो हमारे श्री कृष्ण भगवान जी उनको आराते थे कि अपने घर में ही खा लेना, अपने घर के आदमी को नौजवान बनाना, मथुरा के वो बाहर बेच रहे क्योंकि बेचने नहीं दिया जाता था। वही उसी कारण से हमारे गांव में अभी तक दूध कोई एक गौली बेच नहीं सकता, दही मक्खन कोई बेच नहीं सकता। बच्चों को खिलाते हैं और घर आपस में ही घी वो निकला तो आपस में ही दे सकते हैं, फ्री में देते उसको खाली हाथ नहीं जान देते क्योंकि घर में समझो एक लीटर दूध है और कोई मेहमान किसके घर को आया, वैसा ही उनको गिलास में या कप में दो कप तीन कप वैसा फ्री में दिया जाता मगर पैसा नहीं लिया जाता है।
In Mizoram, the government is actively pushing for introduction of electric vehicle as part of the Go Electric campaign. Towards this objective, electric vehicle roadshow was held in Aizawl. A report on this.
The program was organized by State Designated Agency for Energy Conservation, Government of Mizoram. The roadshow was participated by companies such as Hyundai and TVS. At the national level, the Government of India is introducing electric vehicle in various parts of the country. Electric vehicle are environment friendly, which reduces carbon footprint because there is no emission. Another advantage is that electric vehicles are easy and cheaper to maintain because of their simple structure and operations. Speaking to Akashvani, R.L. Mwanpuyi, Chief Electrical Inspector, said that the roadshow is conducted to promote electric vehicle, which will help in energy conservation. She says,
"We Electrical Inspectorate Office, which is SDA for Energy Conservation for the state of Mizoram, are very grateful to be able to conduct a roadshow of electric vehicles at Aizawl. The same has been conducted in other districts as well. I hope this roadshow is fruitful for promotion of electric vehicles, which is going to help in energy conservation, thereby reduction in fossil fuel consumption. Consequently, this will help problems in climate change, which has been a global issue for many years."
With an aim of promoting electric vehicle in the state, the roadshow is also conducted in various parts of Mizoram. For Parikrama, I read Akashvani,
Aizawl. और हम जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में तन्वी बात कर रहे थे, तो मैं एक बार आपको फिर याद दिलाना चाहूंगी कि शंख, चक्र, गदा, पद्म और बांसुरी और बल्कि मोर के साथ कृष्ण को आपने पूरे देश भर में देखा होगा, लेकिन कच्छ के सोढ़ा समुदाय जो है वो जन्माष्टमी उत्सव में पूजे जाने वाले कृष्ण को कोट पैंट बंडी जैसे पारंपरिक कपड़े मतलब पारंपरिक कपड़े ना पहना करके जो है वो जो एक प्रॉपर अटायर जो होता है हमारा जो हम आजकल पहनते हैं उसे पहना करके जैसे कि कोई परिवार में कोई दूल्हा हो वो ऐसा कृष्ण बनाते हैं। पाकिस्तान के सिंध से आकर कच्छ में बसने वाले सैकड़ों शरणार्थी वर्षों से इस परंपरा को कायम रखते हैं और जन्माष्टमी मनाते हैं। सुनिए हमारे संवाददाता से एक रिपोर्ट।
कच्छ के नखत्राणा तहसील में निरोना वेधर उरीरा गोधियार चंद्रनगर बिब्बा जुरा गांव में पाकिस्तान के सिंध छोड़कर आए सोढ़ा परिवार के शरणार्थी रहते हैं और सिंध में उनके द्वारा छोड़े गए गांव के नाम भी वही है। सोढ़ा समाज का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अगाध है। सिंध की हजारों वर्षों की परंपरा के अनुसार यहाँ पे गोकुलाष्टमी मनाई जाती है जिसके अनुसार कृष्ण की स्थापना मिट्टी से की जाती है। इसके बगल में यशोदा मैया और राधा रानी की एक छोटी मूर्ति भी रखी जाती है। अष्टमी की पूरी रात पूजा अर्चना रात्रि जागरण आराधना भजन सहित कीर्तन होता है। इस प्रकार रात 12 बजे जागरण के बीच कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है और कृष्ण के लिए गीत गाए जाते हैं। हजारों सालों की यह परंपरा के संरक्षण का जश्न मनाते हुए श्री कृष्ण यशोदा जी राधा जी को गांव के आसपास तालाब में विसर्जित किया जाता है और फिर घर पहुंचकर व्रत तोड़ा जाता है। इस परंपरा के बारे में बात करते हुए पाकिस्तान से कच्छ में बसे शरणार्थी नभुआ सोड़ा ने इस प्रकार जानकारी दी।
ये जो जन्माष्टमी यहाँ उजी जाती है वैसे ही हम हमारे यहाँ पारंपरिक रूप और रीति रिवाज में मनाते हैं, जिसमें सबसे पहले गांव की औरतें तालाब या पास की नदी में से जो मिट्टी होती है वो मिट्टी को एकाग्रित करके अपने साथ ले जाते हैं, जिसमें वह गीत और अति भजन गाते हैं, जिसे वो आगे ले जाकर एकाग्रित होके उसकी मूर्तियां बनाते हैं, जिसमें फिर उनका श्रृंगार करते हैं। जैसे हम सोढ़ाओं का जो पगड़ी और अन्य चीजें होती हैं वह पहनाते हैं गहने। उसके बाद पूरे दिन उनका पारंपरिक रूप में भोजन और भजन और हर चीज करते हैं। फिर जैसे ही दूसरा दिन होता है उनको अपने सर पर उठाकर पूरे गांव में प्रदक्षिणा कर पास में जो नदी या तालाब होता है उसमें उन्हें बहा देते हैं। यह परंपरा सभी सोढ़ाओं के द्वारा मनाई जाती है, पास के गांव में भी, और जो सोढ़ा पाकिस्तान से आए हुए हैं और यहां कच्छ में स्थापित हैं वह सभी यह परंपरा जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है। पाकिस्तान में भी मनाई जाती है जहां वहां के हिंदू भाई और मुस्लिम भाई हर कोई उनके दर्शन करने आते हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं।
सोढ़ा समुदाय की परंपरा जन्माष्टमी से एक दिन पहले शीतला सातम की शाम से शुरू होती है, जिसमें गांव के पास तालाब में महिलाएं कृष्ण को कांजी के रूप में संबोधित करती है और लाड़ प्यार वाले गीत गाती है। तालाब की चिपचिपी मिट्टी से कृष्ण की 3-4 फीट बड़ी मूर्तियां बनाई जाती है और उन्हें खामिश तपको बंडी लोंग धोती कंधे का खंगा और सिर पर बंडी से बना साफो पहनाया जाता है। इस प्रकार पारंपरिक परिधान पहने मूछों वाले कृष्ण आकर्षक लगते हैं। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को पाकिस्तान के सिंध से आकर कच्छ में बसे सैकड़ों परिवारों ने आज भी बरकरार रखा है। भूज से परेश मारू के साथ परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खुंड।
नाउ लेट्स लिसन टू आवर प्रोग्राम आजादी का सफर।
द ईयर वॉज 1942। On 8th August, during the Bombay session of the Congress, Mahatma Gandhi decided to demand complete freedom and gave a call to the British government to quit India. The very next day, all the important leaders of Congress were arrested or went underground. There were mass protests throughout the country. Most spent years in prison and out of contact with the masses. And during this time, came into action the secret radio of the Congress. It was an underground radio station which operated for about 3 months during the Quit India movement.
It was the broadcasting mouthpiece of the Indian National Congress and functioned from different locations from Bombay. This very important task was executed by Usha Mehta. The veteran freedom fighter accomplished the task with the help of ham radio operators. On 27 August 1942, the secret Congress radio went on air with Dr. Usha Mehta herself broadcasting this announcement. This is the Congress radio calling on 42.34 meters from somewhere in India.
I was connected with the underground Congress radio in Bombay. Of course, what we used to say was that this is Congress radio broadcasting from somewhere in India. But really, we were operating it from Bombay.
Usha Mehta's other associates for organizing the Congress radio included Vithal Das Khakar, Chandrakant Jhaveri and Babu Bhai Thakkar. The technicians and the equipment were supplied by Nanak Motwani of Chicago Radio, Mumbai. Eminent personalities like Ram Manohar Lohia, Achyut Rao Patwardhan and Purushottam Tikam Das were also associated with the Congress Radio.
Immediately the call was given by Mahatma Gandhi to do or die, we thought it would be better if we have a broadcasting station of our own, because a transmitter certainly is the best way of giving the news about freedom struggle to the people and reaching it to every nook and corner of the country. So we thought of organizing a secret radio station.
On this day in 1781, Haider Ali of Mysore clashed with the forces of the British East India Company at the Battle of Polylur. The forces under Haider Ali endured many casualties from the British but eventually retreated to Kanchipuram. The Battle of Polylur was fought as part of the Second Anglo-Mysore War between the English forces and the Kingdom of Mysore under Haider Ali and his son Tipu Sultan from 1780 to 1784.
The Second Anglo-Mysore War ended with the Treaty of Mangalore, with both the parties agreeing to return the captured territories and prisoners to each other. Mysorean rockets, the first iron-cased rockets, were effectively used against the forces of the British East India Company by the Mysore Army during this battle.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar.
In business news today, India's equity benchmark indices Sensex and Nifty ended flat in a volatile trading session amid mixed global cues. The pack of 30 shares at BSE, the Sensex ended marginally higher at 81,711 and NSE Nifty added 7 points or 0.03% to settle at 25,017 in the Indian bullion market. At 4:10 p.m. the 24 karat gold is trading at 72,020 rupees for 10 grams. Silver 9995 is trading at 85,860 per 1 kilogram.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में, जानते हैं वहां की हलचल. स्टार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर संयुक्त अरब अमीरात में आगामी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय दल की कप्तान होंगी. टीम की उपकप्तान स्मृति मंधना करेंगी. इस स्पर्धा का नौवां संस्करण दुबई और शारजाह में 3 से 20 अक्टूबर तक खेला जाएगा. भारत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ ग्रुप ए में है. और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जो आज के दिन से हमसे जुड़े हुए हैं. बात करेंगे हम सबसे पहले हिंदी फिल्मों के एक ऐसे फिल्मकार जो अपने वक्त के बहुत नामचीन हुआ करते थे. जी नहीं, जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूं ऋषिकेश मुखर्जी की. ऋषिकेश मुखर्जी ने सन 1951 में फिल्म दो बीघा जमीन में बिमल रॉय के सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किया था. बिमल रॉय के साथ 6 साल तक काम करने के बाद उन्होंने सन 1957 में मुसाफिर फिल्म से अपने निर्देशन के करियर की शुरुआत की. उन्होंने अनुराधा, अनुपमा, आशीर्वाद और सत्यकाम जैसी ऑफ बीट फिल्मों का भी निर्देशन किया. चलिए सुने इनके कुछ बेहतरीन गीत.
हर खुशी अपनी तुम पे मरना है, जिंदगी अपनी हो अब के सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर मिल न सकेंगे.
And today is the death anniversary of Mukesh Chand Mathur, better known as Mukesh, an Indian playback singer. Mukesh is considered to be one of the most popular and acclaimed playback singers of the Hindi film industry. In his career, Mukesh sang 110 songs for Raj Kapoor, 47 songs for Manoj Kumar and 20 songs for Dilip Kumar. Let's hear one of his beautiful tracks titled Chand Si Mehbooba Ho Meri.
चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने.
Today is also the birthday of Daleep Singh Rana. We better known him as the great Khali. And with this, we have come towards the end of our program Parikrama.
और अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो प्राची प्रिया और तन्वी खुराना को अनुमति दीजिए कार्यक्रम परिक्रमा को यहीं समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर। साथ ही आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी हमारे कार्यक्रम को 24 घंटे सुन सकते हैं। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं nfu.nsd@nic.in पर भी दे सकते हैं। नमस्कार।